अपर रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
इस सप्ताह के हमारे श्रोता साथी हैं बंशी लाल श्रीवास्तव अमरपुर पेंड्रा से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं सुनील चिपड़े।
नमस्कार, अर्पा कम्युनिटी रेडियो और अर्पा वेब रेडियो के कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में आज हम जिनसे आपकी बातचीत और मुलाकात करवाने वाले हैं बंसीलाल श्रीवास्तव जी अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। तो हमारा ये कार्यक्रम होता है कि हम श्रोताओं के साथ बातचीत करते हैं, उनके सुझाव उनके अनुभव को हम आपके साथ साझा करते हैं। और तो बंसीलाल श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ हैं अमरपुर से। बंसीलाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, अर्पा परिवार को भी हमारी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम श्रोताओं को इस दीपावली त्योहार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बंसीलाल जी,
हाँ जी,
बताइए कि कैसा है पेंड्रा। छत्तीसगढ़ के लोग तो पेंड्रा को जानते ही है, लेकिन पूरा देश और पूरी दुनिया अर्पा रेडियो को सुनती है
जी।
पेंड्रा के बारे में बताइए।
पेंड्रा के बारे में ये है महोदय, एक तो नया डिस्ट्रिक्ट बना है गौरेला पेंड्रा और मरवाही तीनों मिल के। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ उद्योग फैक्ट्री नहीं है और सिंचाई का भी साधन उतना नहीं है।
अच्छा,
यहाँ के किसान लोग जो अपना निजी माने बोर करवा लिए हैं उनका खेती बाड़ी ठीक है, अन्यथा ऊपर पानी के भरोसे पर ही खेती होता है।
अच्छा,
तो यहाँ की मुख्य फसल धान ही है।
तो कहते हैं कि पेंड्रा में काफी हरियाली है, बड़ा अच्छा सुरम्य वातावरण है।
हाँ सर, ये तो ठीक है कि ये जंगली इलाका है।
हाँ,
पेड़ पौधों से माने पूरा घिरा हुआ है चारों तरफ से,
तो वहाँ की ठंड और वहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा लगता होगा।
हाँ सर, यहाँ अभी अब ठंड अक्टूबर आ गया है, नवंबर माने चालू हो गया है, ठंड भी चालू हो गया है। हम लोग अभी रात में रजाई ओढ़ते हैं।
अच्छा।
हाँ, और शाम को भी 5 बजे आग जलाना पड़ जाता है।
अरे बाप रे, मतलब गोड़सी ओड़सी जलने लगी है, अलाव लगने लगे।
हाँ।
अच्छा, आपने ये बताया कि ये जिला जो है गौरेला पेंड्रा और मरवाही, पेंड्रा की तो बात आपने कह दी, और गौरेला किस तरह से अलग है और क्या विशेषता है, और मरवाही किस तरह से अलग है और क्या विशेषता है, यदि आप इसको थोड़ा सा और साफ करना चाहें।
पहले एक तहसील थी माने गौरेला पेंड्रा मरवाही में, सिर्फ गौरेला ही तहसील था। अब जिला बन जाने से माने तीन तहसील हो गए, गौरेला भी तहसील हो गया, पेंड्रा भी तहसील हो गया और मरवाही भी तहसील हो गया।
हम मरवाही आर्ट को हमने काफी सुना है नाम कि पूरी देश दुनिया में फेमस हो गया है मरवाही आर्ट।
जी।
वह अलग तरह की एक चित्रकारी होती है भित्ति चित्र की तरह, उसके कपड़े भी बनने लगे हैं, साड़ियों में भी मरवाही आर्ट आ गया है, कोसा में भी मरवाही आर्ट आ गया है।
जी,
तो इस आर्ट के बारे में वहाँ की कोई जानकारी आपके साथ साझा हो सकती है क्या?
इस आर्ट के बारे में तो अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है सर, क्योंकि मैं 1982 में पटवारी में पहली नियुक्ति मेरी मरवाही छुई थी।
अच्छा,
तो मैं मरवाही में 4.5 साल रहा। इस समय ये इतना उद्योग यह त्यों नहीं था कुछ भी।
अच्छा,
उस समय माने दिन डूबने के बाद में घर से बाहर नहीं निकलते थे भालू के डर से।
अच्छा,
एक तो यहाँ भालू के बहुत बहुत आया था सर गौरेला पेंड्रा मरवाही में। दिन डूबने के बाद में लोग बाग माने कम ही निकलते हैं।
अच्छा,
उस समय वो नहीं था, अभी ये नया नया हुआ होगा तब, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है क्योंकि अब मैं पटवारी से रिटायर हो गया हूँ।
अच्छा,
और यहीं अमरपुर में रहता हूँ, 8-10 साल हो गया रिटायर हुए मेरे को।
अरे वाह, मतलब ये पटवारी जो आपका जॉब रहा है
जी,
काफी इंटरेस्टिंग जॉब है। मतलब आम आदमी को हमेशा सरकार प्रशासन और आम आदमी के बीच में पटवारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी मदद हमेशा लगती है।
जी हाँ,
है ना, आपकी संपत्ति हो, आपकी पैतृक संपत्ति हो।
ना,
तो पटवारी नाम से जो पद है उसके बिना सारा काम अधूरा है।
सही बात कहते हैं आप।
तो बताइए, पटवारी जॉब को यदि कोई समझना चाहे तो आप चंद लाइनों में क्या कहेंगे उसे?
पटवारी जॉब को समझने के लिए सर, एक तो पटवारी के साथ में रहेगा मानो तब वो समझ पाएगा। या इसके लिए फिर वो ट्रेनिंग होता है माने तो
नहीं, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरह के काम आते हैं आप पटवारी पद के अंतर्गत?
पटवारी पद के अंतर्गत में सर किसानों के हर प्रकार के काम है, हर प्रकार के, जैसे किसान कोई फौत हो गया तो उसके वारिसानों का नाम को माने लिखना है, किसी का माने धान नुकसान हो गया तो उसकी जानकारी को भी माने दर्ज करना है कितना नुकसान हुआ, कोई पानी में डूब के मर गया, कोई आग लगने से मर गया, कोई तबीयत हालत से मर गया, उसकी भी जानकारी, माने एक प्रकार से पटवारी एक ऐसे जिम्मेदारी काम है कि एक किसान के उसकी हर चीज की जानकारी को रखता है।
अच्छा,
एक किसान की तो एक गांव में तो कम से कम माने 1000 किसान हैं, तो 1000 किसानों की जानकारी को माने पटवारी माने रखे रहता है माने।
अच्छा
हाँ, और ये एक पटवारी के चार गांव हैं, चार गांव मिलके तो बहुत किसान हो गए, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं पटवारी माने एक सर्वे सर्वा है माने गांव के लिए।
हाँ वाकई
के लिए।
तो जैसा आप ये कह रहे हैं कि एक एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का स्थान होता है पटवारी
जी,
तो अमूमन आम लोग जैसे हमने सुना है कि खेती बाड़ी जमीन, कृषि की जमीन, यहाँ तक कि रिहायशी जमीन, प्लॉटिंग, ये तमाम जमीनी जितनी भी कार्यवाही है वो पटवारी के मार्फत उस पटवारी की प्रक्रिया के मार्फत होकर ही गुजरती है।
जी हाँ।
तो एक तो शहरी इलाका हो गया घर बार का ये सारा चीज, और एक किसानों का इलाका हो गया खेती कृषक का इलाका, मतलब कृषक लोगों की जिम्मेदारी हो गई और एक शहरी बसाहट बस्तियों की बसाहट की जिम्मेदारी हो गई जमीनों की।
जी।
तो एक आम आदमी आपके पास यानी पटवारी के पास किस किस तरह के काम के लिए आता है?
उसके पास जमीन संबंधी काम है सर, और उसके पारिवारिक संबंधी भी काम होता है तो उसके लिए भी माने आते हैं।
जमीन संबंधी क्या क्या काम होते हैं?
जमीन संबंधी में जैसे सर मेरे को जमीन बेचना है तो अब उसको तो मालूम नहीं कि कौन सा खेत है और कौन सा नंबर है, तो पटवारी के पास में आएगा और बताएगा, तब पटवारी बताएगा भाई तुम्हारा वो खेत इतने नंबर का है, इतने एकड़ का है, तब वो उस जमीन को बेच सकता है।
जी जी, मतलब जमीन के संदर्भ की जो भी जानकारी है वो पटवारी के पास दर्ज होती है, उसकी सहायता के बिना शायद वो आगे की प्रक्रिया करना दिक्कत भरा होता है या दुभर होता है, है ना। हाँ, तो चलिए ये तो एक पटवारी के जॉब की बात हो गई है, और इस पे थोड़ी सी और तफसील से बात पे चाहूंगा ही, क्योंकि अर्पा रेडियो को बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे युवा सुनते हैं, बहुत सारे गृहिणियां सुनती हैं, वो अमूमन तौर पर जो घर पे काम करने वाले लोग रहते हैं, मतलब गृहस्थी संभालने वाली महिलाएं होती है, उनका पाला पटवारियों से कम पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि ये आपके मार्फत जानकारी भी जाए कि वो कौन ये इस तरह का पद है और इस तरह की जिम्मेदारी है जो किस तरह से पब्लिक कॉन्टैक्ट में रहता है। तो बंसीलाल जी, चूंकि आप एक बहुत, हम ये जानना चाहते हैं कि जमीन को लेकर बहुत काफी काफी मसले ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं, है ना। कई बार ये होता है कि कोई अपनी जमीन पर गया और पता लगा कि वहाँ किसी और का बोर्ड लगा है या वहाँ और किसी ने चौहद्दी खींच रखी है, तो ये जो चीज होती है नपाई जोखाई की, मतलब कई बार हमने सुना है कि इस तरफ से नापो तो जमीन इधर तक आ जाएगी, इस तरफ से नापो तो इधर तक आ जाएगी, कई बार नापने के यंत्र पे बहुत सारे सवाल उठते हैं, कई बार मतलब ये बड़ा अजीब सा बहुत ही आश्चर्यजनक घटनाएं होती है कि कभी वो वही जमीन किसी एक्स व्यक्ति की निकल जाती है और कभी वही जमीन किसी वाई व्यक्ति की निकल जाती है। तो बहुत सरल शब्दों में, मतलब बहुत तकनीकी शब्दों में नहीं, एक आम श्रोता को आप क्या समझाना चाहेंगे?
इसमें आम श्रोता को मैं ये समझाना चाहता हूँ सर कि जमीन कोई रबड़ तो है नहीं कि वो फैल जाएगा।
बिल्कुल,
जमीन तो जहाँ है वहीं रहेगा, नंबर इधर उधर हो सकते हैं कि भाई मेरा 5 नंबर वाला उसके में चला गया या उसका 4 नंबर इधर लिखा गया, लेकिन जमीन तो वही है, वो रबड़ तो नहीं है कि जो फैलेगा जमीन, इसलिए माने आदमी को संतोष नहीं रहता कि मेरा जमीन माने वो दाब लिया है, वो कहता है मेरा जमीन आप दाब लिए है।
अच्छा,
लेकिन दबा किसी का नहीं रहता।
तो आपने जो कहा कि नंबर इधर उधर हो जाता है, तो जब इतनी मतलब इतने जबरदस्त तरीके से सभी चीजों की पंजी होती है, तो ये नंबर मतलब चार नंबर का पांच नंबर में चढ़ जाना, पांच नंबर का सात नंबर में चढ़ जाना, ये किन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हो जाता होगा?
पटवारियों की गलती से ही होता है सर।
अच्छा,
नक्शा बनाते हैं और उसमें नंबर डालते हैं गोलियों में, तो चार की जगह में लिखते लिखते पांच लिखा गया अगर।
अच्छा,
हमने कोई ध्यान नहीं दिया, वो हम माने उसको बना के ओके कर दिया। अब हम तो अब ट्रांसफर होकर दूसरे जगह चले गए, आने वाला दूसरा पटवारी जब देखेगा उसको तब समझेगा कि अरे अरे तो पांच नंबर था ये चार लिखा गया।
लेकिन हो जाता है, लेकिन उसी बीच उस चार नंबर के दो दावेदार खड़े हो जाते हैं।
दो दावेदार खड़े होंगे सर, तो रिकॉर्ड में देखने से पता चलता है कि ये चार नंबर आज वर्तमान में किसके नाम से है, अब पूर्व में ये किसका था, अब पूर्व में के लिए क्या है। अच्छा, जितने भी नंबर हैं वो पुराने रिकॉर्ड एक तो माने बना हुआ है मिसल, जिसको कहते हैं मिसल, उसमें माने वो
क्या
सीधा माने बना हुआ है कि चार नंबर का खेत एक एकड़ है, पांच नंबर का खेत डेढ़ एकड़ है, छह नंबर का खेत तीन एकड़ है, उसको कोई नकार नहीं सकता, ना उसको कोई मिटा सकता, ना बढ़ा सकता, ना घटा सकता।
बिल्कुल, अभी बातचीत में एक शब्द आया मिसल, मिसल क्या होता है?
ये मिसल है पुराने जमाने में सन 2829 सन में बना था सर मिसल, तो उसमें उस किसान का पूरा बायोडाटा है उसमें।
अच्छा,
कि भाई जैसे आज माने
किसान का मतलब जमीन मालिक का कह रहे हैं।
हाँ, जमीन मालिक का।
ओके, हाँ,
तो आज जैसे माने अब कहते हैं कि भाई मेरा खेत यार एक एकड़ है, तो कोई पटवारी आया तो एक एकड़ को माने काटते 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 पता चला वो डेढ़ एकड़ हो गया, कोई पटवारी आया तो कम हो गया, तो फिर मिसल को देखते हैं कि चार नंबर का खेत वास्तविक में कितना था, तो मिसल में लिखा रहता है कि भाई चार नंबर का खेत एक एकड़ है। अब आज वर्तमान में उसको जोड़ते हैं बटा नंबर हो जाने पर कि बटा एक दो तीन चार मैं खरीदा वो खरीदा वो खरीदा, तो इसको जोड़ने पे पता चलता है कि अरे अरे तो एक एकड़ पांच डिसमिल हो गया, तो ज्यादा हो गया एक एकड़ से। तो ये गलती होता है सर पटवारियों से कभी कभी।
अच्छा, हाँ हाँ, मतलब वही हम ये समझना चाहते हैं कि कई बार जब दर्ज चीजें होती है उसमें कुछ उलटफेर हो जाता है, उसमें छोटी छोटी लिपिकीय त्रुटियां हो जाती है, लेकिन उसको उसको वो तमाम त्रुटियों के साथ जो आम आदमी है वो जूझते रहता है। हर आदमी को अपनी बात साबित करनी होती है, क्योंकि पटवारी और जो जो उस पद पर कार्य कर रहा होता है वो अलग अलग जगहों में ट्रांसफर होता रहता है, अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती रहती है, किसी का प्रमोशन हो जाता है, तो लेकिन एक तो आपको आप एक व्यवस्था के तौर पर एक इस व्यवस्था को या आम लोगों को क्या सलाह देंगे कि ये जो गलतियां छोटी छोटी बार बार होती है या ये कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं, कई बार भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसियों में जमीन को लेकर सालों साल विवाद चलते हैं, कानून अपना काम करता है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय, बहुत सारा श्रम ये देश का नष्ट होता है
जी।
तो ये रिकॉर्ड संधान और रिकॉर्ड पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें इन छोटी छोटी गलतियों को कैसे सुधारा जाए और क्या व्यवस्था हो कि सब चीज एकदम ठीक ठाक रहे?
क्या
आपका सुझाव?
पटवारी का रिकॉर्ड जो है ना कुआं है, कुआं इतना गहरा है कि उसमें माने आप कितनों गोता लगाते रहोगे उसका थाह नहीं पाओगे।
जी जी जी,
ये है असली।
अच्छा,
क्या है कि सभी पटवारी की कार्यशैली एक प्रकार नहीं है। किसी की किसी कोई प्रकार है, किसी का कोई प्रकार है
जी।
कोई माने दो महीने रहा तो अपना दो महीने में सोचता है कि भाई मैं दो महीना तो रहूंगा तो मैं किसी का उल्टा या सीधा बना के चला जाऊं, मेरे को क्या करना है। दूसरा पटवारी आएगा वो समझेगा। ये हम पटवारियों के से ही माने गलती के कारण से होता है सर किसानों को परेशानी।
हाँ नहीं, मैं पिछली चीज को सुधारने के साथ ये चाह रहा हूँ कि कैसी क्या ऐसी व्यवस्था हो कि गलतियां ही ना हो। ऐसा कौन सा
सर? अभी अब वर्तमान में तो कंप्यूटर का जमाना आ गया है, अब कंप्यूटर में सब माने लोड हो गया है।
जी जी जी,
कि एक किसान का माने कितना जमीन है, कौन कौन नंबर है, क्या है। तो कंप्यूटर में भी राम लाल की जगह में श्याम लाल हो गया है, तो उसको भी सुधारने में किसान को माने इतना आ जा रहा है।
वाकई मतलब इसका एक उपाय डिजिटलीकरण हो सकता है, लेकिन उसमें भी मतलब आखिर टंकन की त्रुटियां जिसे कह सकते हैं वो यदि हो जाए तो सब गड़बड़ हो सकता है, सब गड़बड़ हो सकता है, मतलब वो परेशानी फिर लाद के आपको घूमनी पड़ेगी।
हाँ सर,
अक्सर एक इससे कठिन सवाल तो नहीं पर जिससे अक्सर लोग बचते हैं, वो सवाल आपसे कर रहा हूँ
जी,
कि अक्सर बहुत सारे अंदेशे लगते हैं इस पद के साथ
जी,
है ना, तो इस पद के साथ ऐसे अंदेशे ना लग सके या वो ब्लेम ना हो सके इस तरह से, तो वो कौन सी बातें हैं जिससे बचा जाना चाहिए?
उसमें सर पटवारी अपने कार्य शैली को सुचारू रूप से अगर करते रहे ना तो किसानों का भी काम बढ़िया आसान रहेगा, कोई किसान झगड़ेंगे भी नहीं और पटवारी का भी काम आसान रहेगा
जी जी।
तो लेकिन जिम्मेदारी माने क्या है कि सर सब पटवारी एक बराबर तो है नहीं भाई, कि कोई किसी का कोई मूड है, किसी का कोई मूड है। अगर आपने कार्य को माने अच्छा से समझ के और करते रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर, किसानों को ना पटवारी को।
अच्छा, ये तो मैंने आपके क्षेत्र की बात की, आपसे एक सुझाव हम तमाम अरपा रेडियो के, अरपा कम्युनिटी रेडियो और अरपा वेब रेडियो के श्रोताओं को देना चाहेंगे और देश दुनिया में जहां भी हमें सुना जा रहा है उन तक ये पहुंचाना चाहेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति, यदि मैं वो व्यक्ति हूँ तो मैं अपने जमीन जायदाद, जमीन प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, खेत खलिहान के रिकॉर्ड को किस तरह से रखूं, क्या क्या बातों का ध्यान रखूं शुरुआत से लेके अंत तक, यदि मैंने जमीन खरीदी है या किसी को बेच रहा हूं तो वो क्या गाइडलाइन मेरे को स्वयं की अपने आप के लिए रखनी चाहिए कि मेरा मेरा रिकॉर्ड मेरे पास बहुत व्यवस्थित हो। ये आपसे सुझाव हमारे तमाम अरपा रेडियो के लोगों तक पहुंच रहा है।
इसके लिए क्या है सर, जैसे मान लीजिए आपके पास में 5 एकड़ है और अलग अलग नंबर का खेत है
जी,
तो उसका B1 और खसरा का नकल जो कहते हैं, माने वर्तमान में पटवारी के पास में रहता है B1 खसरा, जिसमें माने आपका नाम दर्ज है, आपका जमीन दर्ज है, उसकी नकल आप हर साल लेके रखें।
हर साल
किसी ने, हाँ हर साल, हर वर्ष कि भाई किसी ने चोरी वश माने मेरा नाम काट के अपना नाम तो नहीं चढ़ा लिया है, इसलिए आप अपने जमीन का माने रिकॉर्ड हर साल पटवारी के पास जाएं और उससे कहें भाई मेरे जमीन का भाई नकल मेरे को दे दो।
अच्छा,
तो उससे आपको माने ये रहेगा कि हाँ भाई मेरा 5 एकड़ जमीन है तो और मेरा रिकॉर्ड भी 5 एकड़ का बता रहा है, तो आपको संतोष हो जाएगा कि नहीं भाई ठीक है भाई मेरा पटवारी रिकॉर्ड भी ठीक है और मेरे पास जो ऋण पुस्तिका है, आपके पास जो कागजात है वो भी ठीक है।
मतलब ये खेत के अलावा दुकान प्रॉपर्टी घर जमीन सभी पे लागू होता है
जी।
अच्छा, और
जैसे आप जमीन बेच रहे हैं तो आप कितना बेच रहे हैं वो पटवारी को आप बुलाइए मौके पे कि भैया मैं पटवारी साहब मैं यहाँ से यहाँ तक इसको बेच रहा हूँ, आप इसको नाप के बताइए कि कितना डिसमिल है। अब बेचने के समय आप उसमें माने खूंटा गड़वा दो और लेने वाले को भी बता दो कि भैया मैं ये खूंटा गड़ा दिया आपका, 5 डिसमिल बेच रहा हूँ कि 10 डिसमिल बेच रहा हूँ, इतने में आप अपना माने खूंटा गड़ा के दीवार बनाओ ले, उतने जमीन का ही माने आप कागजात पटवारी से बनवाओ, देख लो भाई मैं 20 डिसमिल बेच रहा हूँ तो 20 डिसमिल का ही कागज बनवाऊ पटवारी से।
अच्छा,
उतने का ही रजिस्ट्री करूँ 20 डिसमिल का ही।
अच्छा जी जी, और एक
क्या है सर, कोई अनपढ़ रहता है जैसे किसान ना, तो खरीदने वाला चतुर है, वो क्या करता है खरीदा तो 20 है लेकिन वहाँ पटवारी से मिलजुल के क्या है, पटवारी से मिलजुल के बना लेते हैं कि 30 डिसमिल का बना दो कागज, 30 डिसमिल हो गया रजिस्ट्री वहाँ, तो इसलिए किसान फिर फंस जाता है।
अच्छा,
साहब मैंने तो 20 डिसमिल बेचा वो 30 डिसमिल रजिस्ट्री करवा लिया। इसलिए किसान को भी चाहिए कि माने किसी शिक्षित को माने अपने साथ में रख के माने उस जमीन की रजिस्ट्री के समय माने उसको देख रेख में माने करवाए
जी। हम जीत की ओर तो चलेंगे ही, लेकिन एक छोटी सी बात और आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने कहा है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका B1 खसरा हर साल इशू करवाया जाए ताकि आप अपने रिकॉर्ड से दर्ज रिकॉर्ड को मैच करा सके, ठीक है, तो ये B1 खसरा निकालने की प्रक्रिया क्या है और उसका खर्च अमूमन कितना आता है यदि हर साल कोई व्यक्ति निकाले तो?
अब माने उसका एक काउंटर बन गया है तहसील में, हर तहसील में वहाँ आप जाइए आप आवेदन बनाइए कि भाई मेरा फला नाम है, मेरे नाम से ये नंबर की जमीन है, मेरे को B1 खसरे की नकल चाहिए वर्तमान की।
अच्छा,
तो वहां से वो दे देते हैं, उसका माने 400 या 150 रुपया है माने अभी, अब शासकीय माने अब।
अच्छा,
तो ये हाँ। कंप्यूटर से ही निकलता है नकल अब।
हाँ, तो ये शासकीय 400 या 150 रुपए है, तो ये B1 खसरा निकालने की प्रक्रिया कितने दिनों की है? यदि मैंने आज एप्लीकेशन दिया
वो तुरंत निकाल देते हैं सर?
तुरंत निकल जाती है,
तुरंत निकल जाता है आजकल अब।
अच्छा,
हर तहसील में एक काउंटर बना हुआ है नकल निकलवाने का, वहाँ तुरंत निकल जाता है।
चलिए, ये आपकी जानकारियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ताकि श्रोता में आज के हमारे भी मेहमान हैं, और पिछली बातचीत का कंक्लूजन ये था कि B1 खसरा का रिकॉर्ड हर साल खुद निकलवाते रहें, बेचते समय सीमा का निर्धारण बहुत ध्यान से करें, और यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कागजों के पढ़ने की समझ आपकी नहीं है, तो जरूर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को साथ में रखें। और इसके साथ एक और संदेश अर्पा रेडियो की तरफ से जोड़ देते हैं कि ये जो अनपढ़ होने की छाप है, हम अगली पीढ़ी में पूरी तरह से मिटा दें और अपने घर के बच्चों को बच्चियों को पढ़ाएं, ताकि किसी भी सरकारी कामकाज में और किसी भी व्यवस्थागत चीजों में उनकी ताकत पढ़ने की उनके साथ हो। तो बंसीलाल जी हमारे साथ हैं, बंसीलाल जी आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत। बताइए कि हमने सुन रखा है पिंडरा अमरपुर जैसे ही नाम याद आता है, तो यहाँ आसपास बिलासपुर, खासकर बिलासपुर के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग अरपा नदी का उद्गम जानते हैं आसपास, तो वो क्या है, कहाँ है
अरपा नदी का उद्गम स्थल? सर पुराने जमाने से बताते आ रहे हैं कि पिंडरा में है कहीं।
अच्छा,
लेकिन मैं पटवारी हूँ, मैं रिकॉर्ड को खुद देखा हूँ।
अच्छा,
उस रिकॉर्ड में माने अरपा उद्गम का स्थल पेंड्रा नहीं लिखा हुआ है।
ओ,
अरपा का उद्गम स्थल लिखा हुआ है खोडरी गांव में है।
अच्छा, जो खोडरी खोमसरा हम सुनते हैं।
हाँ हाँ, वही खोडरी है।
अच्छा, तो हमने तो ये सुन रखा है और कई बातचीत में कई सवाल जवाबों में ही आता रहा है कि अच्छा अरपा का उद्गम स्थल तो अमरपुर, तो
अमरपुर में नहीं है सर।
और आप बता रहे हैं कि जो रिकॉर्ड में है।
जी,
तो रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है दरअसल?
रिकॉर्ड में वो निजी जमीन है सर, किसी किसान का।
अच्छा, कौन सी खोडरी
अरपा उद्गम का स्थल जो है वो खेत बना हुआ है सर।
अच्छा,
वहाँ पहले दलदल था माने, पानी जमा होता रहा होगा वहाँ माने, तो दलदल था वहाँ, तो लोग बाग उसको समझ लिए कि ये अरपा नदी का उद्गम स्थल है, लेकिन वास्तविक में वो अरपा नदी का उद्गम स्थल नहीं है, वो है माने किसी किसान का माने निजी जमीन है।
अच्छा, जो अमरपुर की बात कर रहे हैं।
जी,
और खोडरी की जो बात आप सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार खोडरी की जो बात कर रहे हैं, वहाँ क्या है?
वहाँ अरपा नदी का उद्गम स्थल लिखा हुआ है रिकॉर्ड में।
अच्छा, और मौके पर भी लिखा हुआ है?
हाँ, मौके पे भी है अरपा नदी का उद्गम स्थल वहाँ।
हाँ,
और रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है।
अच्छा, तो उद्गम स्थल कैसा है अभी, वहाँ से पानी रिसता है, क्या चीज है?
यही छोटा सा यहाँ से नाला जो निकला हुआ है वो वहाँ जाके नदी बन गया है।
कहाँ से निकला है? अमरपुर से।
हाँ, यहाँ से जो पानी बहते जाता है नाली नाली से, वहाँ जाते जाते वो चौड़ा होके नदी बन गया है खोडरी में भी।
अच्छा, तो अमरपुर से पानी खोडरी तक पहुँचा।
जी,
तो हम खोडरी को उद्गम स्थल क्यों कह रहे हैं?
उसका उद्गम स्थल वही है सर असली।
अच्छा,
पानी तो बहाव माने जिधर उतार रहेगा सर, पानी तो उसी तरफ बहेगा ना। तो यहाँ का पानी उतार में जैसे खोडरी नीचे में है माने पेंड्रा से, तो इधर का पानी सब उसी तरफ बह के जाता है।
तो अरपा के उद्गम स्थल के पास आपने पूरा अपना कार्य जीवन बिताया है और अभी वहाँ पे रहते हैं। तो खोडरी और अमरपुर के बीच की आपस की दूरी कितनी है सर?
ये 12-15 किलोमीटर करीब है सर।
अच्छा, तो ये 12-15 किलोमीटर की दूरी है और पे अलग अलग तरह की तथ्य हैं, अलग अलग तरह की बात है। आप चूंकि शासकीय सेवा में रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि जो पंजी में दर्ज है वो खोडरी उद्गम स्थल है, और जो किस्सों कहानियों में हमारे पास पहुंचता है वो।
हाँ, किस्सों कहानियों में सब यही कहते हैं आज ही अरपा नदी का उद्गम स्थल ये अमरपुर पेंड्रा ही है।
अमरपुर पेंड्रा है। हाँ, चलिए, तो इस बातचीत को हमें किसी, अभी फिलहाल तो हम किसी कंक्लूजन पर नहीं लाते, लेकिन ये मानते हैं कि हाँ दोनों तरह की बात है, और हम अरपा रेडियो की तरफ से हम भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और श्रोताओं से भी कहना चाहेंगे कि जिन बातों की दो तरह की राय आए, वाकई उनके बीच उनकी अपने तरीके से पड़ताल की जानी चाहिए और अपने अपने कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए, ताकि सही जानकारी से हम लैस हो सकें। और ये वाकई एक अच्छा विषय है कि अरपा जो बिलासपुर से होकर गुजरती है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसकी व्यवस्थित जानकारी हम सब मिल करके इकट्ठा करें। चूंकि अरपा की बात चल रही है और अरपा इन दिनों बहुत सूखी सूखी सी है, इन दिनों क्या सालों से सूखी है कहना चाहिए तो, और आप पटवारी भी रहे हैं, जमीन जायदाद पेड़ इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बताइए कि अरपा को वापस हम सब मिलकर जिंदा कर पाए उसके लिए हम सबको क्या प्रयास करने चाहिए।
प्रयास वही है सर कि एक तो नदी का खनन ज्यादा हो रहा है और पेड़ों पे भी कटाई हो रही है और बरसात तो खैर अभी ये 2 साल से बहुत हो रहा है सर, हमारे यहाँ पेंड्रा क्षेत्र में बहुत पानी गिरा है, बहुत 2 साल से, और अभी बादल भी छाया हुआ है, अभी भी पानी गिरने की उम्मीद है माने, तो उसको बचाने के लिए वही है सर कि माने पेड़ पौधे को लगाएं, पेड़ों की कटाई ना करें
जी,
तो नदियों का भी माने वो खनन ना करें, रेती निकाल के पूरा माने एकदम खोखला कर दिए रहे नदियों को, तो उससे जल स्तर अच्छा, एक तो क्या है सर हर गांव में माने आप देखिए हैंडपंप हो गया, बोर हो गया, इससे पानी का स्तर भी सब नीचे चला गया है, असली कारण तो ये है। तो अब ऊपर के पानी से जितना माने गिरेगा उससे माने फिर अरपा में माने पानी रहेगा सर।
जी जी, मतलब जितना जमीन से हम पानी निकालने की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं उसे कम से कम करें और नदी के कटाव को बचाएं और पानी फिर से जमीन तक पहुंच सके इसके लिए हम आसपास खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं। और वाकई हमने पढ़ा भी है और जानकारियों में भी है और ये विज्ञान की जानकारियां भी है कि यदि नदी को जिंदा करना है, किसी वाटर बॉडी को जिंदा करना है तो उसके आसपास खूब सारे पेड़ लगा दीजिए। और कई लोग हुए हैं, राजेंद्र कुमार हुए हैं हरियाणा के जो जल बाबा नाम से जाने जाते हैं, उनका भी किस्सा है, उन्होंने भी मरुस्थल वाली जैसी जगहों पर खूब सारे पेड़ लगाए हैं और पानी वहां पे इकट्ठा कर दिया है। तो अरपा के आसपास रहने वाले लोगों से, अरपा का इस्तेमाल करने वाले लोगों से हमारी गुजारिश अरपा रेडियो के माध्यम से, क्योंकि नाम भी हमारा अरपा है और हम चाहते हैं कि अरपा गीली रहे, नमी बनी रहे और बहती रहे, अरपा रेडियो के संवादों के समान अरपा नदी भी बहती रहे और लोगों तक पहुंचते रहे, तो अरपा के आसपास रहने वालों से हमारी गुजारिश कि अरपा के दोनों किनारों पर सघन वृक्षारोपण किया जाए ताकि हम नमी को बचा सके और पानी फिर जमीन तक पहुंच सके, अरपा नदी में खल खल करता बह सके उसकी व्यवस्था करें। अमरपुर पिंडरा से हमारे साथ बने हुए हैं, सप्ताह के श्रोता हैं, कार्यक्रम अरपा रेडियो का है, अरपा वेब रेडियो और अरपा कम्युनिटी रेडियो, और आप सब हमारे साथ हैं ही। बंसीलाल जी,
हाँ जी,
बात रेडियो की है ही, बताइए हाँ। रेडियो से आपका रिश्ता किस तरह का है?
मेरा रेडियो का रिश्ता सर बड़ा दिलचस्प है सर,
जानना चाहेंगे।
क्या है कि सर मेरे पिताजी भी पटवारी थे।
ओ,
अब उनके पिताजी भी पटवारी थे।
क्या बात है, मतलब
तो
पुश्तैनी पद समान आपके आगे बढ़ रहा है मामला।
हाँ सर, क्योंकि मैं अपने बच्चों को तो नहीं बना पाया पटवारी, वो शिक्षक है मेरा लड़का।
चलिए, बहुत जरूरी पद पर है वो, बहुत मतलब देश का निर्माण कर रहे हैं शिक्षक। आप बता रहे थे कि रेडियो के साथ आपकी दोस्ती, आपका याराना कैसे कब?
हाँ, तो रेडियो का दोस्ती ये हुआ सर, मेरे पिताजी पटवारी थे कहाँ अकलतरा में।
अच्छा,
मैं उस समय 9वीं 10वीं पढ़ता था। मेरे पिताजी माने सिगरेट पीने का उनको आदत था।
अच्छा,
तो मेरे को सिगरेट लेने के लिए 5 ठेला भेजते थे कि जाओ सिगरेट ले आओ।
अच्छा,
और मैं जाता था वहाँ 5 ठेला में। तो 5 ठेला में एक बड़ा वाला रेडियो रखा रहता था, उसके ठेला में था।
अच्छा,
और उस समय जब मैं जाऊँ तो रेडियो सिलोन से पुरानी फिल्मों का गीत आता है 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में।
वाह,
वो चलते रहता था उसके यहाँ। तो उस समय मेरे को ख्याल है माने कि मनोहर महाजन उद्घोषक थे उस समय।
हाँ,
तो वो रेडियो को मैं सुनता था रोज जाऊं तो। तो मेरे मन में भी आया कि नहीं यार, ये रेडियो सुनने में और उस गीत के आनंद में माने बड़ा अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम भी एक रेडियो ले लें।
जी,
तो फिर मैंने अपने पिताजी बाबूजी से बोला कि भाई एक तो रेडियो माने ला दो। फिर बाबूजी माने फिर बिलासपुर गए हैं, फिर वहां से एक तो बूस रेडियो लेके आए।
अच्छा,
तो फिर उस रेडियो, फिर हम माने रेडियो सिलोन है, रायपुर स्टेशन है, भोपाल है, विविध भारती है और ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस, इतना माने उस समय ज्यादा प्रचलन में था। तो रायपुर में अपन फरमाइश भेजते थे उस समय।
अच्छा।
और रेडियो में माने मैं उस समय माने सुनता था भाठापारा के बचकामल, बेमेतरा की ईश्वरी प्रसाद साहू और दतरंगी के है भागवत वर्मा।
हाँ, दतरंगी भाठापारा के।
हाँ, मगरलोट के पुन्नूराम साहू जी। इनका नाम मैं सन 70 से सुनते आ रहा हूँ।
वाह।
तो फिर सन 70 से सुनते हुए आ रहा हूँ और मैं भी फिर 70 से ही फरमाइश भेज रहा था कार्ड के जरिए।
अच्छा।
फिर सन 2017 में मैंने रायपुर में श्रोता सम्मेलन हुआ सर। तो उसमें मैं भी गया था।
अच्छा।
तो उस समय वहाँ कमल शर्मा भी आए थे, विविध भारती के उद्घोषक, और मनोहर महाजन भी आए थे, ये बचकमल भी गए थे, ईश्वरी प्रसाद भी गए थे,
क्या बात है,
और ये पुन्नू लाल भी गए थे, मगर लोग के पुन्नू राम साहू जी।
हाँ, पुन्नू राम साहू जी।
उनको मैं अपने आंखों से देखा उस दिन।
वाह।
मैं उनका चरण स्पर्श भी किया कि भाई आज जिनको मैं सन 70 से जिनका नाम मैं सुनते आ रहा था, आज उनको मैं अपने आंखों से देखा, मेरा आंख नम हो गया सर।
वाकई। अभी तो हम बहुत सारे विजुअल माध्यम में, टीवी के माध्यम में, सिनेमा के माध्यम में लोगों को एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन एक अलग दौर था जब आप किसी की रूहानी सी आवाज सुन रहे हैं, वो आपके दिलों तक जा रही है, आदमी रेडियो पर उन्हें सुनते हुए रोता हंसता, सारी फीलिंग्स रेडियो के माध्यम से होती थी, और वो रेडियो पर बोलने वाला व्यक्ति जब अनायास आपके सामने आ जाए तो क्या कहने।
जी सर,
अलग तरह की फीलिंग थी वो। चलिए, रेडियो से यूं ही रिश्ता बनाए रखिए और रेडियो सुनने वालों से भी रिश्ता बनाए रखिए। मतलब कई श्रोता ऐसे हैं जिनको हम नामों से जानते हैं, मतलब उनके नामों के साथ हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि अच्छा ये श्रोता इस तरह से दिखता होगा, इस तरह से बात करता होगा, उनकी चिट्ठियों से, उनके नामों से हम जानते हैं। बड़ा अद्भुत संसार है रेडियो का।
हाँ सर,
है ना। और इस संसार को बचाने का काम कम्युनिटी रेडियो कर रहे हैं, जो भारत सरकार के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। कम्युनिटी रेडियो भी उसमें एक हिस्सेदारी कर रहे हैं और अरपा वेब रेडियो तो पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। अमरपुर से आप हैं और सप्ताह के श्रोता में आज के हमारे मेहमान हैं अरपा वेब रेडियो और अरपा कम्युनिटी रेडियो में। तो बंसीलाल जी, बातचीत का ये आखिरी पड़ाव आपसे करते चलें। जैसा कि आपने कहा था कि मनोहर महाजन जी से, कमल शर्मा जी से आपकी मुलाकात हुई, तो आपको आपकी याददाश्त में आपने कहा था कि 70 से आप रेडियो सुनते आ रहे हैं, फिर खतों और खतूतों का सिलसिला आपका रेडियो के साथ जारी हुआ, कौन सी और यादें हैं उन नामों की जिनकी आवाज आप तक पहुंचती रही?
कितने भी तो ऐसे श्रोता है सर कि अब जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक तो है जैसे महोबा के पंडित मेवालाल परदेशी का नाम बहुत आता था। और इटारसी के ताराचंद पुरवैया जी।
अच्छा।
और अपने छत्तीसगढ़ बागबहरा के थे बटुकलाल और शांति लाल।
जी जी जी,
ये भी नहीं रहे इस दुनिया में। तो सुन के दुख होता है सर। अभी अभी वर्तमान में वो एक हमारे श्रोता थे माने जसपुर के, वो खत्म हो गए सर।
जी जी,
नागदेव जी।
जी जी, नागदेव जी। ये तमाम नाम सिर्फ हमारे नाम नहीं है, वो रेडियो से प्यार मोहब्बत की एक मिसाल रहे।
मिसाल है सर।
और हम आपसे साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिनको आप रेडियो से सुनते रहे हैं, जो प्रस्तोता रहे हैं, तो रेडियो सिलोन के जमाने के कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके जहन में अभी तक है?
उस जमाने के सर, उस समय अनाउंसर थी ज्योति परमार थी, पद्मनी परेरा थी, विजय शेखर जी थे, विजय लक्ष्मी दिशेरम थी। विजय लक्ष्मी दिशेरम आज बीबीसी लंदन में माने चली गई है, वहाँ से उनका नाम, उनकी आवाज सुनने को मिलता था, अब तो नहीं मिलता। खैर, गोपाल शर्मा जी थे, दलवीर सिंह परमार थे वहाँ उद्घोषक।
जी जी, तो इन सब की आवाजों के साथ बहुत सारी यादें आपके दिलो दिमाग में होंगी। तो
हाँ, एक बात और बताता हूँ सर
जी,
रेडियो सिलोन से अब तो माने नहीं आ रहा है, अब हफ्ते में एक दिन आते थे। उस समय पहले एक ही फिल्म के गीत आता था रोज सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक के।
अच्छा।
तो वो उन गीतों को मैं सन 70 से लिखते हुए आज कापी में मैं रखा हूँ सर।
ओह, क्या बात है, तो अद्भुत बात आपने बताई। तो जो गीत, जो फिल्म के कार्यक्रम एक ही फिल्म में जो फिल्म और गीत प्रसारित होते थे उनको आप कॉपी में लिखते थे, मतलब
कॉपी में मैं लिख के रखा हूँ सर अभी भी,
कि क्या उसमें क्या जानकारियां हैं, मतलब क्या चीज
जानकारियां है सर, कौन कौन से गीत थे उस फिल्म में,
अच्छा,
और उसके उस फिल्म के कलाकार भी कौन थे, कौन गायक थे, कौन संगीतकार थे, कौन गीतकार थे। आज सिर्फ बुधवार को ही एक ही फिल्म गीत आता है सर, आज सिलोन से, तो उसको देख के मैंने ये करता हूँ तो पता चलता है कि अरे यार ये तो तीन बार और आ बच चुका है पहले,
अच्छा,
तो उसमें मैं सिर्फ डेट भर लिखता हूँ सर।
अच्छा,
आज जैसे बुधवार था सर, हम सब चोर हैं का मैंने एक ही फिल्म गीत में सुनवाया था आज,
अच्छा,
और ये सन 17 में ही सुनवाया था एक बार, तो उस तारीख को मैं इसमें डेट को नोट कर देता हूँ मैं कि इस सन में मैंने इस फिल्म का गाना मैंने सुनवाया गया था ये।
वाह, मतलब आपने जमीन जायदाद के रिकॉर्ड तो संभाले ही है, साथ में संगीत के प्रसार का ये रिकॉर्ड आपके पास जो है कि कौन सी फिल्म का गीत कब बजा और कब कब बजा, ये आप लोग का प्यार आपकी मोहब्बत है रेडियो के लिए जो बताती है, ये छोटे छोटे प्रमाण है, ये कॉपियां, ये दस्तावेज कि कितनी जरूरत है हम सबको रेडियो की, है ना। तो बताइए इस जरूरी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, इस जरूरी फ्रिक्वेंसी के माध्यम से,
एक बात और सर,
आखिरी गीत कौन सा?
हाँ, गीत सुना रहा हूँ सर, एक मिनट।
हाँ जी बताइए।
अनिश श्रीवास जी है ना, ये मेरे यहाँ आए थे, हाँ, अमरपुर
जी जी जी,
ये कापी देख लिए हैं, कापी को भी ले गए थे मेरा।
अच्छा,
15 दिन रखे थे और, हाँ 15 दिन रखने के बाद फिर वापस किए थे।
वाह वाह वाह,
मेरे यहाँ आते रहते हैं वो।
क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे श्रोता हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं, बहुत सारे श्रोता हैं जो चाहते हैं कि सप्ताह के श्रोता में हम ऐसा शामिल हो, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम साप्ताहिक है तो ये बातचीत भी हमारी साप्ताहिक ही होगी। हमारी कोशिश है कि अलग अलग तरह के अलग अलग अनुभवों से लैस श्रोताओं की बातचीत हम सुनवाएं, ताकि आज के श्रोताओं तक भी ये बात पहुंचे, नए जुड़े श्रोताओं तक भी बात पहुंचे, और वे पुराने लोग जिनकी रेडियो से बहुत यारी है उन तक भी ये बातचीत पहुंचते रहे। तो हमारा कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा, आप हमें बताते रहिए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, और चिट्ठी पत्री का जरिया तो है ही, उसे भी भेजते रहिए, ईमेल करते रहिए हमें, और अरपा वेब रेडियो और अरपा कम्युनिटी रेडियो के साथ हमेशा जुड़े रहिए, आपका प्यार हमेशा हम पर बनाए रखिए। बंशीलाल श्रीवास्तव जी अमरपुर से हमारे साथ थे इस कार्यक्रम में, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये साझा किया।
नमस्कार सर।
तो श्रोताओं से अलविदा चाहते हैं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।
नमस्ते।
सप्ताह के श्रोता, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना अरपा रेडियो पर। आज के हमारे श्रोता मेहमान थे पेंड्रा से बंशीलाल श्रीवास्तव, और इनसे बातचीत की सुनील चिपड़े ने।
आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।